والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر حکومت مستضعفین کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک قصص کی پانچویں آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کیا پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ونوریدو اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے ان منا کہ ہم منت گزاری کریں گے احسان کریں گے علی الذین استضعفوا فی الارض ان لوگوں کے اوپر جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے ہم ان پر احسان کریں گے منت گزاری کریں گے بس کیا کریں گے بنجعلہم ائمہ انہی مستضعفین کو ہم زمین کے اوپر امام اور رہبر اور لیڈر قرار دیں گے ونجعلہم الوارثین اور انہی کو ہم زمین کا وارث قرار دیں گے آپ کی خدمت میں عرض کیا مستضعف حالت ضعف نہیں ہے امکان ہے کہ کوئی ضعیف ہو لیکن اس کے ضعف کو اگر کوئی اور آ کر ختم کر دے تو پھر یہ ضعیف تھا مستضعف نہیں ہو سکا مستضعف نہیں بنا لہذا معاشرے کے جتنے بھی پست طبقے ہیں کمزور طبقے ہیں ان کو اللہ نے کمزور رکھا ہے جس کا چاہتا ہے رزق کھولتا ہے جس کا رزق چاہتا ہے بند کرتا ہے دونوں کا ہی امتحان ہے جس کا رزق بند کیا ہے اس کا امتحان صبر ہے یہ کہ وہ صبر سے کام لے البتہ اس صبر کا معنی کوشش نہ کرنا نہیں ہے صبر کہیں پر بھی اس معنی میں توکل اس معنی میں ہرگز بھی قناعت اس معنی میں हरगिज़ नहीं है। ये बाज़ अफराद ऐसे होते हैं कि जो अपनी सुस्ती अपनी काहिली को कनाअत का नाम देते हैं, अपनी सुस्ती और काहिली को तवक्कुल का नाम दे रहे होते हैं। नहीं, सुस्ती और काहिली ये कनाअत की डेफिनेशन नहीं है, और न दीन हमसे ये कहता है कि आप फ़क्र फलाकत और कमज़ोरी की ज़िंदगी गुजारें। लिहाजा अपने रिस्क को वसअत देना, ज़्यादा कमाना मुस्तहसन है, दीन ने पसंद किया है। ज़्यादा कमाना मुस्तहसन है, लेकिन ज़्यादा कमा कर फजूल खर्ची भी ममनू है। दुरूद पढ़ेगा एक मतलब बुलंद आवाज़ से। आगा साहब, आपकी खिदमत में एक बहुत ही जसारत के साथ चंद बातें अर्ज करूँगा। ज़्यादा कमाना मुस्तहसन है, कमाना चाहिए ज़्यादा, दीन इसे नहीं रोकता। दीन क्या कहता है, ज़्यादा कमाओ लेकिन फिर न बोखी की तरफ जाओ, कंजूसी की तरफ जाओ, न फजूल खर्ची की तरफ जाओ। और तीसरा रास्ता क्या है, ना जमादरी दौलत की तरफ जाओ। अब ये अपनी जगह मौजूद हैं कि जिनको अलग से बयान करने की ज़रूरत है, आज मौका और महल नहीं है। कि दीन हमें अमीर होने से नहीं रोकता, लेकिन दौलत को जमा करने से मना करता है। अब इन दोनों में इख्तलाफ नहीं है। ये कैसे होता है मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। आप कभी भी दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं, जब आप उनको जाकर हिसाब किताब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने जमा कम किया होता है, री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की होती है। लिहाजा दीन हमसे जो कहता है वो क्या, कि अपने पास रोक के मत रखो दौलत को। लेकिन आया री इन्वेस्टमेंट का कहता है दीन हमसे, या कोई और रास्ता बताता है, वो मबाहिस अपनी जगह पर महफूज। लेकिन दीन हमसे क्या कहता है, अमीर बनना नहीं रोकता, ज़्यादा कमाने से दीन नहीं रोकता, बल्कि दीन की नज़र में क्या है, ये मुस्तहसन है, ये अच्छा है कि आप ज़्यादा कमाएँ। लिहाजा कुछ लोग जो क़नाअत का नाम ये देते हैं कि ज़रा सी कुछ ज़रूरतें पूरी हुई, अब सिर्फ काहली और सुस्ती के मारे कुछ और नहीं करना चाहते, तो उसका नाम क्या देते हैं, क़नाअत। नहीं, ये क़नाअत दीन में हरगिज़ मौजूद नहीं है। न दीन ये चाहता है कि हम दौलत कमाने के चक्कर में ना इबादात के रहें, ना घर वालों के रहें, ना ये भी नहीं चाहता। तो बड़ा बैलेंस रास्ता है दीन का कि जिसको इख्तियार करने की ज़रूरत है। अगर अपनी इबादात के लिए टाइम निकालते हुए, अपने घर वालों के लिए टाइम निकालते हुए मज़ीद आपके पास गुंजाइश है कि आप कुछ और काम करके अपनी घर वालों की वसअत रिज़्क़ी का इंतज़ाम कर सकते हैं, तो यह अमल मुस्तहसन है, ये होना चाहिए। लेकिन जब दीन हमें मना करता है जमा करने से, तो बुनियादी तौर पर वजह क्या है, हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है उस पर किसी ज़ईफ़ का हक है, तो वो उस वक्त पहुँचानी है। अगर वो लोग के जिनको अल्लाह ने रिस्क ज़्यादा दिया है, अपने हिस्से का इजाफी रिस्क, लिहाजा कुरान क्या कहता है, मोमिन की पहचान फ़ी अम्वालिहिम हक मालूम लिस्साइल वल महरूम, इनके अम्वाल में एक हक मालूम है साइल और महरूम के लिए। यह हक मालूम उस तक पहुँचाना, ये वो काम है जिसके ज़रिए से दीन क्या चाहता है, इन ज़ईफ़ तबक़ात को इस्तेज़ाफ़ से बाहर निकालना, इस्तेज़ाफ़ में न जाने देना। बस ये मुस्तज़ाफ़ कब बनते हैं, जब इनका हक इन तक ना पहुँचे। ये कौन सा तबका है, ये गरीब। अब इस गरीब तबका, ये जो ज़ईफ़ तबका है, इसको इस्तेज़ाफ से बाहर निकालना किसका काम है, इसका काम है आवाम का काम है, ये उन लोगों का काम है जिनको अल्लाह ने रिस्क ज़्यादा दिया है। अब इनके लिए अल्लाह नहीं कह रहा कि हम इनको इमाम बनाएंगे, इनको हम ज़मीन का वारिस बनाएंगे। क्यों, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, इनके अंदर रहबरीत की सलाहियत नहीं पाई जाती। ज़मीन की विरासत अपने हाथ में रखना ये इनकी सलाहियत नहीं है। ये कि इंसानों की रहबरीत ख़ास तौर पर उस वक्त कि जब इंसान आमादा हो कि उनके ऊपर अल्लाह हाँ हुकूमत करे, जब इंसान आमादा हो कि दीन और आईन और इस्लाम उनके ऊपर हुकूमत करे। अगर लोग आमादा हो जाएं इस काम के लिए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इस मरहले में कभी भी इंसानों को ये इख्तियार नहीं देता कि दीन सालारी इस्लाम की हुकूमत के लिए लोग किसी को खुद मुंतखब करें। यह हक अल्लाह किसी को नहीं देता। वजह क्या है? जब दीन भेजा उसने है तो दीन चलाने वाले भी वही भेजता है। अब इसकी अहम तरीन वजह क्या है? एक मरतबा इमाम से आकर किसी ने सवाल किया और पूछा, तो इमाम ने कहा कि तुम जिस इमामत की बात कर रहे हो, ये जो तुम कहते हो कि जी लोगों ने बनाना है, ये कैसे इमाम को तुम चाहते हो? सालेह को चाहते हो या गैर सालेह को चाहते हो? उसने कहा मौला यकीनन हम चाहते तो यही हैं कि फर्द सालेह आए और हम पर हुकूमत करे। तो इमाम ने फरमाया तुम्हारे पास उसके जाहिर अमल को देखने के अलावा और क्या पैमाना है कि जिससे तुम ये अंदाजा लगाओ कि ये शख्स सालेह है? तुम्हारे पास पैमाना आखिरी क्या है कि तुम जाहिर में देखते हो कि ये शख्स नमाज पढ़ रहा है, रोजा रखता है, जाहिर में अपने आप को मुतदय्यन जाहिर कर रहा है, लेकिन इसके आगे क्या पैमाना है? इसके आगे कोई पैमाना नहीं है। अगर ये अपनी खिलवतों में जाकर गैर साले अमल अंजाम देता है तो क्या तुम्हें मालूम हो सकता है? का नहीं। का अगर ये जाहिर तो अपने आप को साले कर रहा हो लेकिन फासिदुल अकीदा हो तो क्या तुम्हें मालूम होगा? का नहीं मौला हमें तो मालूम नहीं होगा। का जब तुम्हें कुछ मालूम नहीं होगा तो तुम्हें बनाने का इंतखाब का हक दिया किसने है? कुछ मकामात ऐसे हैं इंसान थोड़ा सा जरा सा अपनी अक्ल इस्तेमाल करे। नबूवत के पूरे सिलसिले में अल्लाह ने अंबिया को भी ना नबी बनने का हक किसी को दिया, ये कस्बी नहीं है। जो हमारे यहां बाज मकातिब ने इस तरह की गलत एक अप्रोच इख्तियार की है कि जी फला शख्स नेक था तो अल्लाह ने उसको नबी बना दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लिहाजा वो ये जो बात कहते हैं ये क्यों है? मनसूस मिन अल्लाह का इनकार करेंगे तो अपने बनाए हुए वालों की जगह मिलेगी। अब उसके लिए चाहे तौहीन नबूवत करें, चाहे तौहीन अल्लाह तबारक व तआला तौहीन दीन करें, उससे गरज नहीं, अपने वाले फिट आने चाहिए। लिहाजा उनको फिट करने के लिए असलन मनसूस मिन अल्लाह का इनकार करते हैं, इस तरह की तारीफें करते हैं, इस तरह के अकायद लेकर आते हैं कि गोया उससे नबी भी माज़ल्ला ज़ालिक क्या साबित होता है? गुनहगार साबित होता है। तो ये जितने भी अफकार हैं ये सारे के सारे बातिल अफकार हैं, ताकि इनके जरिए से गैर मासूमीन के नुफूज के रास्ते को आसान बनाया जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का अपना निज़ाम क्या है कि उसने कभी भी अंबिया को बनाने का हक अपने अलावा किसी और को नहीं दिया। अब अंबिया के दरमियान ही जहां नबूवत का सिलसिला रहा है वहीं पर नबूवत के साथ इमामत का सिलसिला हमेशा रहा है। नबी जहां कहीं पर भी उम्मत की रहबरी के मरहले में दाखिल होगा इमाम कहलाएगा। अब अगर नबी खुद इस मरहले में दाखिल होगा तो वो नबी ही इमाम कहलाएगा, और अगर नबी नहीं दाखिल होता इस मरहले में और नबी के अलावा कोई और आता है तो वो शख्स भी इमाम है, लेकिन उस शख्स को भी इमाम बनाने का हक नबी को हासिल नहीं है। लिहाजा सबसे बेहतरीन मकाम इस बात को समझने का हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। नबुवत और रसालत और उलुल अज़मियत के तमाम मराहिल को दर्क करते हुए जब अल्लाह तबारक व तआला हजरत इब्राहिम को इमामत इस्लाम इमामत मुस्लिमीन के मरहले की तरफ लेकर जा रहा है तो यह नहीं कह रहा कि इब्राहिम तुम ऐलान कर दो कि मैं इमाम हूं, या इब्राहिम खुद कहें कि परवरदिगार मैं तेरा नबी मैं तेरा रसूल मेरे पास औलिल आज़म अब मुझे ही तू बना दे इमाम, नहीं बल्कि अल्लाह क्या कह रहा है इन्नी जाअलुका लिन्नासे इमामा, ऐ मेरे हबीब ऐ मेरे खलील ऐ मेरे नबी तुम खुद नहीं बन सकते, इन्नी जाअलुका लिन्नासे इमामा मैं तुम्हें लोगों के लिए इमाम मुकर्रर करूंगा। तो जब इब्राहिम जैसा नबी अपने आप को इमाम नहीं बना सकता तो कोई गैर मासूम अपने आप को इमाम बनाकर पेश करने की जुरात कैसे कर सकता है? ये निज़ाम इलाहिया के अंदर जुरात है कि कोई इस्लाम के दायरे में शरीयत के दायरे में घुसकर अपने आप को क्या मौरफी करे कि जी मैं हूं मुझे बनाया जाए मैं आता हूं, नहीं। असलन इमाम को इमाम बनने का हक जब इब्राहिम जैसे नबी को नहीं है, लिहाजा पूरे कुरान में जहां कहीं पर भी अल्लाह ने इमामत मुस्लिमीन की बात की है, मुसलमानों की रहबरियत की बात की है, मुसलमानों की क़यादत की बात की है, वह जअलना मिनहुम अइम्मा यहदू नबे अम्रना, हम हैं कि जो इनमें से इमामों को मुकर्रर करते हैं, यहदूना बे अम्रना ये इमाम हमारे अम्र से हिदायत करता है। क्यों? जब दीन मुसलमानों पर हुकूमत करेगा तो फिर क्या होगा? जब दीन करेगा तो अब दीन का
चलाने वाला इस दीन में रियासत और हुकूमत उसके हाथ में होनी चाहिए कि जो इस्लाम का इजरा खुदा के अमर के मुताबिक करे। अब ऐसा शख्स अगर गैर मासूम है तो वो खुद नहीं जानता कि दीन को कहां लेकर जाना है, वो खुद ताबे हुक्म है। लिहाजा ऐसा शख्स कभी भी इस्लाम की रियासत को अपने हाथ में नहीं रख सकता। लिहाजा चूंकि नहीं रख सकता, यह अमर मकदूर नहीं है मुसलमानों के लिए। लिहाजा परवरदिगार ने इस जिस तरह से नबूवत को अपने हाथ में रखा, इसी तरह से इमामत मुस्लिमीन को भी परवरदिगार ने अपने इख्तियार में रखा है। बस इस्लाम में इमाम का तायुन कहीं पर भी होगा, हजरत आदम से लेकर इमाम ज़माना अज़्ज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तक। ये इंतखाब, ये इख्तियार परवरदिगार आलम ने किसी को अता नहीं किया। इमाम जब भी होगा कौन होगा? मासूम होगा। कौन बनाएगा? अल्लाह। क्यों? इसलिए कि अल्लाह जानता है किसी का ईमान कैसे है। अल्लाह जानता है कि ये आज साले है कल भी साले रहेगा या नहीं, इसका माजी साले है या नहीं, इसका मुस्तकबिल साले है या नहीं, ये अपनी खिलवतों में साले है या नहीं, इस बात का इल्म चूंकि खुदा के अलावा किसी को हासिल नहीं हो सकता, लिहाजा इमामत मंसूस मिन अल्लाह ये काम सिर्फ और सिर्फ किसका है? अल्लाह तबारक व तआला का। अब ये अफराद के जो शाइस्ते इमामत है ये मुस्तज़ाफ कब बनते हैं? ये मुस्तज़ाफ, अब ये खुद ज़ईफ नहीं है, कल मैंने तफसील साहब की खिदमत में अर्ज किया, ये मुस्तज़ाफ नहीं है लेकिन सूरत हाल ईजाद होती है और उस सूरत हाल में इनके मुकाबिल पर जो अफराद आए हैं वो कौन है? मुफ्सिदीन फिल अर्ज, ये वो हैं जो जमाने में फसाद मचाने वाले हैं। ये कौन है? ये शैतान के हरकारे हैं जो आते हैं और आइम्मा के मुकाबले पर फसाद फिल अर्ज मचाते हैं और फसाद फिल अर्ज के में क्या करते हैं कि ये चूंकि मुफसिदीन हैं, इनका कोई अखलाक नहीं है, लिहाजा आइम्मा के मुकाबले पर ये हर गलत हथकंडा इस्तेमाल करने के लिए आमादा हैं। रिश्वतें ये देते हैं, लोगों को नाहक कत्ल ये करते हैं, लोगों के घरों को आग ये लगाते हैं, मैनिपुलेशन हर तरह की जो गलत हटकंडा है वो इस्तेमाल करते हैं। ये सियासत नहीं है अजीजा ने मन, हमारे यहाँ भी इसको जो सियासत कहा जाता है, इसको खरीद लो उसको खरीद लो, इसको दबा दो उसको दबा दो, इसको मार दो उसको उठा लो, ये सियासत नहीं है, ये शैतानत है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल वाज़ह तौर पर शैतानत है। अब अगर हमारे सियासतदान तबकात में कोई ऐसा फर्द मौजूद है कि जो ये हरकतें करता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसको सियासतदान न कहें, वो अपने जमाने का शैतान है। इसी तरह से मुक्तदर तबकात में अगर कोई ऐसे अफराद मौजूद हैं कि जो अपने सामने उठने वाली आवाजों को दबा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, इजाजत नहीं दे रहे कोई उनकी आवाज के इजाजत के बगैर बात करे, तो ये फिरौनियत तो कहला जा सकती है, सियासत और तदबीर और मैनेजमेंट नहीं कहला सक सकते। लिहाजा ऐसा नहीं है कि नमरूद और फिरौन का जमाना खत्म हो गया, जब तक जमीन पर तागूत मौजूद रहेंगे नमरूद और फिरौन पैदा होते रहेंगे। अब ये नमरूद कैसे पैदा होते हैं, ये फिरौन कैसे पैदा होते हैं, इनके मुकाबले पर अइम्मा जो कि खुदा की तरफ से इल्म भी लेकर आए हुए हैं, इनसे ज्यादा बेहतरीन सियासतमदार कोई नहीं है, ये मुस्तज़ाफ क्यों होते हैं? इनके इस्तज़ाफ की वाहिद वजह इनके गिर्द मौजूद अफराद हैं। इसलिए कि मैंने कल भी आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि ये अल्लाह तबारक व तआला का फैसला ये अपनी जगह पर महफूज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कभी भी मुअजज़ात के जरिए से हुकूमत को कायम नहीं करना। नबी या इमाम या वली मुअजज़ा दिखाता है अपनी विलायत के इस बात के लिए, यह आखिरी हुज्जत होती है, मुअजज़े से ऊपर कोई हुज्जत नहीं है। अब अगर कोई मुअजज़ा देखकर भी ये न समझे कि ये नबी है ये इमाम है तो फिर कयामत के दिन उसके पास कोई और चारा नहीं है, मुअजज़े पर आकर बहस खत्म हो जाती है। लेकिन आया मुअजज़े से लोगों को जबरदस्ती मजबूर करना है कि वो नबी की इताअत करें? आया मुअजज़े, अब ये मुअजज़े का इनकार करना ही बाज लोगों का ये बता देता है कि जो मुअजज़ा चांद के दो टुकड़े कर सकता है क्या वो गर्दनों को झुका नहीं सकता? वो उंगली जो डूबे हुए सूरज को निकाल सकती है, वो उंगली क्या ध्रुवों के दिलों को मोल्ड नहीं कर सकती, उनके दिलों से निफाक को निकाल नहीं, करार नहीं है, जबर नहीं। अगर ये जबर आ जाए अब और कीजिएगा, ये जबर ये करार नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला क्या कह रहा है? वह नूरी दो ان منع علی الذین استضعفوا فی الارض، ہم نے ارادہ کیا ان مستضعفین فی الارض کو، ان کے اوپر احسان کریں گے اور ان کو کیا بنائیں گے؟ امام بنائیں گے. یہ اللہ کا احسان، یہ کیسے متحقق ہونا ہے؟ اللہ کا یہ ارادہ کیسے متحقق ہونا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا، میں نے جو عرض کیا کہ اطراف کے لوگوں کے اوپر یہ کیسے ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے اب یہ بحث ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ آیا انسان خود ارادہ اور مختار ہے یا نہیں، ارادہ رکھتا ہے یا نہیں، مختار ہے یا نہیں، یا مجبور ہے. اور ہمارے ارادے میں اور خدا کے ارادے میں فرق کیا ہے. تو کوشش کروں گا کہ آج کی گفتگو میں بات کو کہیں تک پہنچا سکوں تاکہ کل کو نہائی گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کر کر زحمتوں کو تمام کروں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان من، ہمارا ارادہ، ہمارا اختیار، کوئی بھی ارادہ اور کوئی بھی اختیار اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک علم حاصل نہ ہو. لازم بات ہے جس چیز کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اس سے متعلق کوئی ارادہ پیدا ہونا معنی نہیں رکھتا. ہم عام طور پر جو مشکل پیدا کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ جب خدا کے ارادے کا مرحلہ آتا ہے تو دو غلطیاں ہم کرتے ہیں اس حوالے سے. ایک، یا ہم خدا کے علم اور ارادے کو اپنے علم اور ارادے جیسا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لہذا ہمیں بہت ساری چیزیں سولو نہیں ہوتی. اور دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض ہم اللہ کے علم اور ارادے کی ایک ایسی غلط تفسیر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو عقل کو معوف کرنے کے مرحلے میں، عقل کو معطل کرنے کے مرحلے میں داخل ہو جاتی. ان دونوں کے آثار ہمارے اوپر برے پڑتے ہیں. جب ہم اللہ کے علم اور ارادے کو اپنا طرح سمجھ لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کرتا کیسے کام، اس لیے کہ ہم خود مجبور ہیں، ہمارا ارادہ بہت ہی ضعیف سا ارادہ ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم بھی لامحدود ہے اور ارادہ بھی لامحدود ہے. یہ علم بھی عین ذات ہے اور ارادہ بھی عین ذات. ہمارے ہاں علم کا ہماری ذات کے ساتھ اتصاف تو ہے، ہم متصف بعلم تو ہو سکتے ہیں لیکن علم ہمارے وجود کا حصہ نہیں بنتا. جاہل پیدا ہوئے، علم کسب کرتے ہیں اور پھر دوبارہ کوئی حالت ہمارے پر ایسی طاری ہو سکتی ہے کہ جب علم ہم سے جدا ہو جائے. یہی کیفیت ہے، جب پیدا ہوتے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے؟ اگر خدا ہمیں رونے اور چوسنے کی طاقت نہ عطا کرے تو انسان ان دو چیزوں کے بغیر گزارا نہیں کرے. یہ بھی اللہ نے لطف کیا ہے کہ اس نے ہمیں رونا سکھا دیا اور کم از کم کچھ چوسنا سکھا، یہ نہیں بتایا کیا ہے. لہذا چھوٹے بچے کے منہ میں آپ جو کچھ بھی ڈال دیں گے اس کو یہ نہیں پتا میں نے کیا چوسنا ہے، وہ خالی کیا کرتا ہے؟ چوسنا جانتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ انسان کے علم اور ارادے کی کیفیت ہے. اور جب وہ بڑھاپے کی ایک حد پہ پہنچ جاتا ہے تو کیا بچتا ہے اس کے پاس؟ نہ علم بچتا ہے اور نہ ارادہ. دوبارہ اس حالت میں آ جاتا ہے کہ اس کے منہ میں بچے کی طرح سے چیزیں ڈالی جاتی ہیں تاکہ وہ کچھ چیزوں کو، نہ منہ میں دانت رہتے ہیں نہ وہ طاقت رہتی ہے، جہاں سے ابتدا ہوئی وہیں پر. یہ انسان کے علم اور ارادے کی حقیقت ہے. اب اس بین، یہ جو ہم اپنے ارادے پر اتنا اکڑ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جی میں بڑا خود مختار ہوں، میں جو چاہے کروں، یہ جو چاہے کروں والا معاملہ نہیں ہے. انسان کو اللہ نے ارادہ اور اختیار اگر دیا ہے تو وہ ارادہ اور اختیار بہت ہی ضعیف سا ارادہ اور بہت ہی ضعیف سا اختیار ہے. اب یاد رکھے گا، یہ جو ارادہ اور اختیار دینے کا مرحلہ ہے، کائنات میں ارادہ اور اختیار تفویض کرنا، کسی کو خود مختار بنانا، کسی کو صاحب ارادہ بنانا، یہ سوائے اس ذات کے جو خود غنی عن العالمین ہو کسی اور کے لیے ممکن نہیں ہے. لہذا ایک بحث جو آج کل ہمارے بچوں کے اندر بڑی شدت کے ساتھ زور پکڑی ہوئی ہے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ہمارے اکثر بچے، ہاں، یہ کچھ اشتباہات کا شکار ہو جاتے ہیں. कुछ चीज़ें जो इनको समझ में नहीं आती। ऑटोमेटिक का मतलब वो क्या समझते हैं? बा इख्तियार। ऑटोमेटिक का मतलब क्या समझते हैं? बा इरादा। ऑटोमेटिक ना बा इरादा होता है और ना बा इख्तियार, इसको समझें। और इस बात को अपने जहनों में अच्छी, इस शुभे को अपने जहन के अंदर अच्छी तरह से बैठा लें। कायनात में इरादे को तफवीज करना, किसी को साहिब इरादा और इख्तियार बनाना, ये सिर्फ किसका काम है? जो खुद क्या हो? गनीयन अनिल आलमीन, जो आलमीन से गनी हो, सिर्फ वो ये काम कर सकता है। जो खुद मोहताज हो वो किसी और को इरादा नहीं दे सकता, वो किसी और को साहिब इरादा नहीं बना सकता। लिहाजा एक बच्चे से, जो मेरे ख्याल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शायद एमफिल कर रहा था, एक मुलाकात के दौरान मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से बहुत शोर मचाया हुआ है, थोड़ा सा हमें भी समझा दो, लेमैन समझ के ही समझा दो, एक आम आदमी की शक्ल में मुझे बता दो कि तुम जो ये कहते हो कि हम मशीनों को साहिब इरादा और इख्तियार बना सकते हैं, इससे मुराद क्या है? उन्होंने कहा अगर आपको आसान सी मिसाल से समझा दूंगा। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी होगी अगर आसान मिसाल से समझा दोगे। कहा मौलाना मसलन फ़र्ज करें कि आपकी इस गाड़ी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैमरे लगे हुए, सिस्टम मौजूद है, तो क्या होगा? हमने उसको बता दिया पहले से कि भाई अगर स्पीड ब्रेकर नामी कोई चीज़ आए तो उसको डिटेक्ट करते ही वो अपनी रफ्तार को कम करेगा और फिर उसके ऊपर से आहिस्तगी से आपको गुजार देगा। कब ये हमने उसको इरादा और इख्तियार दे दिया, अब जब भी उसे स्पीड ब्रेकर नजर आएगा वो क्या करेगा? आराम से रोकेगा गाड़ी को और गुजार देगा। मैंने कहा तुमने इसका नाम इरादा रखा है? कहा जी बिल्कुल, ऑटोमेटिक होता है। मैंने कहा नहीं बेटे, इरादा इसको नहीं कहते। मैंने कहा इरादा इसको कहते हैं कि स्पीड ब्रेकर नजर आ रहा हो उसके बावजूद भी दिल चाहे कि आज बगैर रफ्तार कम किए गाड़ी को थोड़ा सा उड़ा लिया जाए। हाँ, ये अक्सर हमारे नौजवान ताज़ा ताज़ा मोटरसाइकिल चलाना जब सीखते हैं, हाँ, तो इनके अंदर ये खासियतें पाई जाती हैं कि ये क्या होता है, कभी कभार वैसे तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगा लेते हैं लेकिन कभी कभार बड़ी मौज मस्ती में होते हैं तो सामने स्पीड ब्रेकर नजर भी आ रहा है तब भी स्पीड कम नहीं करते। भाई आज दिल चाह रहा है कि वाइट मोटरसाइकिल मसलन परवाज करे। मैं कहीं अपनी मशीन को ये सिखा सकते हो कि तुम्हारी मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी अचानक से उसका दिल चाहे कि भाई आज ब्रेक नहीं लगाना, आज ऐसे ही उसके ऊपर से गुजर जाना। कहीं आगा साहब ये नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई इसी का नाम इरादा है, इसी को इख्तियार कहते हैं। असल इरादा और इख्तियार ही। अब गौर कीजिएगा, अगर कोई इसके पीछे किसी तरह का वो जो भी एनालॉग बनता है उसको अगर आप पेचीदा से पेचीदा भी कर दें तब भी क्या होगा? जो आपने पेचीदगी पैदा की है वो बस उसी हद तक रहेगा, उस पेचीदगी से आगे नहीं जाएगा। अब हो सकता है कोई आम जहनियत रखने वाला उस पेचीदगी को ना समझ पाए तो वो समझेगा कि भाई ये तो खुद ब खुद कर रहा है। नहीं, वो खुद ब खुद नहीं कर रहा होता। जितना आपने एनालॉग उसको दिया हुआ है, अब वो पेचीदा तर होगा तो पेचीदा तर अमल करेगा, लेकिन इससे ज्यादा जो आपने दे दिया आपकी इनपुट से आगे जा ही नहीं सकता। ये महाल है, असल मुमकिन नहीं है। जो चीज आपने अपनी मशीन को नहीं सिखाई, लिहाजा अब वो जो नया शुभा ईजाद करने के आपके जहन में बात कर रहे हैं वो क्या है? वो कहते हैं जी हमने कुछ मशीनें ऐसे बता ली हैं जो खुद सीख रहे हैं। अजीज़े मन, क्यों बेवकूफ बना रहे हो लोगों को? उनके सीखने के मरहले को भी तुमने एक एनालॉग के जरिए से सेट किया हुआ है। जब तक तुम ये एनालॉग नहीं दोगे वो हत्ता उस चीज के ऊपर भी अमल नहीं कर सकता। वो सिर्फ थोड़ी सी पेचीदगी ज्यादा है, मराहिल दर मराहिल दर मराहिल आपको चीजें कर देंगे तो कुछ पेचीदगियां हैं जो सामने आएंगी, लेकिन कभी भी इस पेचीदगी के दायरे से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? बनाने वाले का जब इल्म लामहदूद महदूद है तो वो किस तरह से लामहदूद इरादे को और इरादे को खल कर सकता है? वो कैसे लामहदूदियत की तरफ जा सकता है जिसका बनाने वाला? तुम्हें खुद तो मालूम नहीं है कुछ, जो तुम्हें नहीं मालूम हो तुम उसको सिखा कहां से दोगे? और खुदा इसका नाम है कि जो तुमने सोचा भी नहीं होता खुदा उससे बहुत आगे है। लिहाजा खुदा के इल्म और इरादे को कभी भी अपने इल्म और इरादे से कभी भी कंपेयर ना करें। हमारा इल्म भी निहायतन महदूद, हमारा इरादा भी निहायतन महदूद। कितना महदूद इरादा है गौर कीजिएगा। हम कितने बाइख्तियार हैं? हम समझते हैं बहुत बाइख्तियार हैं। क्यों जी? मैं अपनी मर्जी से खाता हूं, अपनी मर्जी से पीता हूं, अपनी मर्जी से सोता जागता हूं। इनमें से किसी भी चीज को इरादा और इख्तियार नहीं कहते। ये जो इरादा और इख्तियार, इसी वजह से आप हैवानात को बाइरादा और इख्तियार कहते हैं? नहीं कहते। भाई क्यों नहीं कहते? इसलिए कि हैवान भी बहुत सारे, हालांकि ये जो आपने बातें बताई ये सब हैवान करता है या नहीं भाई? जब उसका दिल चाहता है खाना खाता है, जब उसका दिल चाहता है सो जाता है। हाँ, आपसे ज़्यादा आज़ाद है। जहाँ उसका दिल चाहता है मदफू कर देता है, जहाँ उसका दिल चाहता है पेशाब कर देता है। आप तो ये नहीं कर सकते, आप तो मुकैदात में हैं, लेकिन जानवर तो ये भी सब कुछ कर रहा होता है। तो आपसे ज़्यादा बा इरादा बार अख्तियार नहीं है। ये इरादा और इख्तियार अज़ीज़ाने मन याद, इसको समझिएगा। इरादा और इख्तियार तो ये होगा कि आप पेट भरे हुए हों फिर भी आप खाना खा कर दिखाते हैं, खा सकते हैं। अच्छी तरह से सोए हुए हों दोबारा सो कर दिखाते हैं, कर सकते हैं? कर सकता है कोई? नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकता? ये जो आप समझ रहे हैं कि मैंने अपने इरादे और इख्तियार से किया, यहाँ पर कोई आपका इरादा और इख्तियार नहीं है। आपको भूख लगी है तो आपने खाना खाया है, आप थके हुए हैं तो आपको नींद आ रही है, ज़रा सी टेंशन हो जाए, हाँ सुबह पेपर देना हो फिर जितना मर्जी इसको सुला कर देख लो फिर नहीं आएगी नींद। अब क्यों नहीं आ रही भाई? तुम इतने बा इरादा और इख्तियार हो तो सोकर दिखा दो। हाँ कोई टेंशन हो जाए तो भूख नहीं लग रही, बगैर भूख के खाना खा के दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हो। तो इरादा और इख्तियार का समझ में आ गया? असल ये इरादा और इख्तियार नहीं, असल इरादा और इख्तियार क्या है कि जहां पर इंसान के पास हाँ और ना का इख्तियार आ जाए, जहां वो ये कर सके ये मेरे पास अवेलेबल है, अब मेरे पास हाँ और ना दोनों का इख्तियार है और अब मैं इसमें से किसी को ऑप्ट करूं, यहां से इंसान का इरादा और इख्तियार शुरू होता है। अब ये इरादा और इख्तियार कौन बनाता है? ये इरादा और इख्तियार खुदा तफवीज करता है। कैसे तफवीज करता है? जब खुदा हमारे ऊपर शरीयत के अहकाम को लागू करता है, शरई हुदूद को मुकर्रर करता है, तब हम साहिब इख्तियार बनते हैं। ये थोड़ी सी समझने वाली बहस है, इसको गौर कीजिएगा। अगर आज फर्ज करें ऐलान हो जाए परवरदिगार की जानिब से, भाई रूफ़ अल कलम कल तुम्हारे ऊपर छुट्टी, कल से कोई ना हलाल ना हराम ना वाजिब ना मुस्तहब ना मकरूह, कोई शरीयत नहीं, कल का दिन छुट्टी, कोई शरीयत नहीं, कल के लिए रूफ़ अल कलम, कल आपका दिन फ्री है, आप बेफिक्र हो जाएं, ना कोई हराम ना कोई वाजिब ना कोई मुस्तहब ना कोई मकरूह, कुछ नहीं आपके ऊपर, तो आप मुझे गुनाह करके दिखा सकते हैं? कोई हराम ना हो तो आप मुझे गुनाह करके दिखा सकते हैं? कोई वाजिब और मुस्तहब ना हो तो आप मुझे कोई नेक काम करके दिखा सकते हैं? कोई सवाब का काम करके दिखा सकते हैं? जब कुछ वाजिब ही नहीं है, कुछ मुस्तहब ही नहीं है, कोई हुक्म शरी ही नहीं है, तो अमल कहाँ से अंजाम देंगे? कर सकता है कोई गुनाह? अगर अल्लाह, हाँ हाँ, बस अगर अल्लाह शरीयत उठा दे तो हम में और जानवरों में कोई फर्क बाकी? को समझे, शरीयत अगर उठ जाए तो शरीयत के ना होने के बाद इंसानों में और हैवानात में डेवलपमेंट के अलावा कोई और फर्क बाकी नहीं है? बाकी हम भी फिर हैवानों की तरह से, भूख लगेगी तो खाना खाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो सो जाएंगे, सारा काम जरूरत के तहत चल रहा होगा। जरूरत आपको इरादा और इख्तियार नहीं देती, जरूरत ही तो असल इजबार है। जरूरत निकल जाए तो फिर मजबूरी कोई नहीं है। बस अब अगर जरूरत ना हो तब भी इरादा और इख्तियार कहां से आता है? जब तक शरीयत की हुदूद ना आ जाए, जब तक शरीयत का दायरा ना आ जाए। लिहाजा हमारे यहां बाज़ औकात बाज़ जगहों पर बाज़ लोगों के दरमियान इस तरह के कुछ गलत अकायद मौजूद थे कि बाज़ आयात पर बाज़ ईदों के दिन उन्होंने कहा जी आज फला ईद है, आज छुट्टी है, ईद का दिन है, आज जो मर्जी कर लो, आज ईद का दिन है, गुनाह हिसाब नहीं होगा। नहीं अजीजों, जिस दिन शरीयत उठा ली जाए वो इंसान की पस्ती की तरफ लेकर जाता है, कमाल की तरफ नहीं लेकर जाता। शरीयत का उठ जाना हैवानियत की तरफ लेकर जाता है। शरीयत पास इसका माना क्या हुआ? ये शरीयत का दायरा है जो हमें इंसान बना रहा है। अब अगर मेरे बच्चों को इतनी सी बात समझ में आ जाए तब इनको पता लगेगा कि ये मजहब इस्लाम, ये शरीयत, ये फिक्र, ये सारी की सारी पाबंदियां बुनियादी तौर पर तुम्हें हैवानियत के दायरे से निकालकर इंसान बनाने की तरफ अल्लाह का लुत्फ और करम है। लिहाजा आप जितने भी तुम्हारे जानने वाले, आप यकीन करें जो भी जिस वक्त शरीयत के दायरे से बाहर निकल रहा होता है, शरीयत के दायरे से बाहर नहीं निकल रहा होता, इंसानियत के दायरे से बाहर जा रहा हो, इंसानियत के दायरे। लिहाजा अब ये जो हमारे यहां ये शैतानी फिक्रे हैं, ये शैतान के वसवसे हैं कि जो आकर हमारे लोगों को, बच्चों को ये कहते हैं कि भाई ये क्या दीन है जो तुम्हें एंजॉय नहीं करने देता, तुम्हारी आजादी को सल्ब कर लेता है, फलां कर लेता है। तो हमारे बच्चों के पास जवाब होने चाहिए। जवाब क्या है? کہ تم جو یہ سمجھتے ہو کہ یہ پارٹی کرنا، یہ نمازیں نہ پڑھنا، یہ ہر وقت حلال حرام کی بحث سے باہر رہ جانا، یہ زندگی ہے، یہ زندگی نہیں، یہ کیا ہے؟ حیوانیت ہے، یہ حیوانیت. ثانیاً، اب غور کیجئے گا، دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اگر آپ کمال کی طرف جانا چاہتے ہیں تو کمال آپ کو بغیر تربیت کے، بغیر آپ کو مقید کیے، بغیر کمال نہیں پہنچ سکتا. مثلا میں کھیلوں کی بات ہی کر لیتا ہوں. اگر کوئی بچہ پاکستان لیول پر کھیلنا چاہتا ہے، واقعی سیریس ہے، کھیلنا چاہتا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو اچھا کوچ تلاش کرنا پڑے گا. جب آپ اچھا کوچ تلاش کریں گے تو کوچ کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی اتنے بجے آنا، اتنے بجے جانا، یہ کھانا، یہ مت کھانا، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا. ہاں، اب یہ بچہ جو کوچ کی باتوں پر عمل کر رہا ہے، اس کی مقابلے پر وہ بچے جو گلی کے بس گلی ڈنڈی سے ان کی زندگی آگے نہیں جاتی، کہاں گلی محلے میں کھیل کر اپنے آپ کو بڑا فنکار سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایسے بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے بھائی یہ کوئی تمہاری زندگی ہے، اتنے بجے جاؤ، اتنے بجے آؤ، یہ مت کھاؤ، وہ مت کھاؤ. لیکن یہ بچہ جانتا ہے نا کہ یہ کوچ جو مجھے بتا رہا ہے، یہ جو ٹریننگ مجھے دے رہا ہے، یہ جو مجھے سختی کر رہا ہے، اس سے میں اس کمال تک پہنچوں گا. اب یہ بچہ جس کا آج مذاق اڑایا جا رہا ہے، جب یہ کلر کھیل کر کھیل رہا ہوتا ہے، اسکرینوں پر آتا ہے، تو یہی گلی ڈنڈے کھیلنے والے، یہی گلی کوچوں میں ہاں اپنے آپ کو چیمپئن سمجھنے والے، اس کے سامنے آ کر کہتے ہیں بھائی یار تم تو بڑے زبردست نکلے، تم تو بہت تگڑ پہنچ گئے. پھر جب وہ ترقی کرتا ہے، اس کے بعد بڑی گاڑی آ جاتی ہے، بڑی بنگلہ، بڑا بنگلہ آ جاتا ہے، پھر یہی آ کر اس کو کہتے ہیں ہاں بھائی یہ گھر کار تمہاری ہے؟ وہ کہ ہاں میری کار ہے. یہ بنگلہ تمہارا ہے؟ ہاں میرا ہے. بھائی تم تو بڑی ترقی کر گئے. تو اب اس کو یاد دلانے کی ضرورت ہے نا کہ جب تم میرا مذاق اڑا رہے تھے، جب تم مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری زندگی میں کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے، تمہاری زندگی میں کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی آزادی نہیں ہے، تمہاری آزادی نے تمہیں کہاں پہنچایا؟ میری قید نے مجھے کہاں پہنچایا؟ اب زندگی کے ہر شعبے میں یہ ہے، تعلیم میں یہی مرحلہ ہے، کھیل میں یہی مرحلہ ہے. ہر کمال کی طرف جانے والا، اب یاد رکھیے گا، کمال کی طرف کا جو سفر ہے وہ ان راستوں کے بغیر کبھی بھی، اب وہ جو سارا دن اپنے گھر میں سوتا رہے، ساری راتیں کھڑے پر بیٹھا رہے، نہ تعلیم کے مقابلے میں کہیں پہنچتا ہے، نہ کھیل کے مقابلے میں، کسی بھی دنیا کی فیلڈ میں اگر کمال کی طرف سفر کرنا ہے تو آپ کو ان سختیوں سے گزرنا پڑے گا. بس جو انسان کو حقیقی کمال کی طرف لے جانے والا مدبر ہے، وہ جو کہ انسان کو اس کے کمال پر لے جانے والا مربی ہے، اس مربی کو رب تعالی اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں. یہ جو اس نے شریعت کا دائرہ بنایا ہے، یہ شریعت کا دائرہ تمہیں کمال پر پہنچانے کے لیے بنایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دین ہمیں انٹرٹینمنٹ سے منع کرتا ہے. دین نے عید کا تصور رکھا ہی اسی لیے ہے، دین نے خوشی کا تصور رکھا ہی اسی لیے ہے. لیکن کیا کہا؟ اپنے وقت پہ کرو، اتنے بجے اٹھو، اس ٹائم پر یہ کرو، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ اگر تم یہ سمجھ جاؤ کہ یہ وہ مربی ہے جو مجھے انسانیت کے کمال پر لے جانے والا ہے، تو تمہیں شریعت کبھی بھی بوجھ نہیں لگے گی. بس اب غور کرنا، یہ شریعت کا دائرہ ہے جو اپنے ابتدا میں تمہیں حیوانیت سے نکال کر انسانیت میں لے کر آتا ہے. اب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ شریعت مجھے روکتی ہے، اتنے بجے اٹھو، اتنے بجے یہ کرو، اتنے بجے وہ کرو، یہ سختیاں نہیں عزیزو. اگر تم یہ سمجھ لو کہ یہی سختی تمہیں کمال کی طرف لے کر جائے گی، یہ تمہارے پروردگار، یہ اس رب کی طرف سے تمہاری تربیت کا ایک نظام ہے، اور اس پر عمل کر کے دیکھو تمہارے پر کمالات کیسے آتے ہیں، تب غور کرنا. یہ جو انسان کو اللہ نے ارادہ دیا ہے، یہ بہت ہی معمولی سا ارادہ، ہمارا ارادہ، ایسا نہیں ہے کہ ہم 50% مختار ہیں اور 50% مجبور، ایسا نہیں ہے. حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی نے آگے پوچھا مولا میں کتنا مختار ہوں اور کتنا مجبور ہوں، تو امام نے اس کی عقل کے مطابق سمجھانے کے لیے اسے کہا ایک پاؤں اٹھا اپنا، اس نے اٹھا لیا. امام نے فرمایا اب دوسرا اٹھا، اس نے کہا مولا نہیں اٹھا سکتا. بکا سمجھ لے اتنا ہی تو مختار ہے. اب اس سے 50% اگر کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے تو غلطی ہے، کیوں؟ ٹانگیں ہوتی ہی دو ہیں، اس لیے آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن مرحلہ کیا ہے؟ انسان کا ارادہ اور اختیار کائنات میں بہت ہی ضعیف سا ہے. آپ جب کسی جگہ پہنچتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، ایک نوالا جو آپ اٹھا کر کھا رہے ہیں، یہ آپ کی فکر ہے، یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اٹھا کر کھایا ہے. یہ نوالہ کون سے مراحل کو طے کر کر آپ تک پہنچا ہے اور آپ کون سے مراحل کو طے کر کے اس نوالے تک پہنچے ہیں, اگر ان کو سوچنے کے لیے بھی بیٹھیں گے تو لا تحصوها, آپ کبھی بھی ان کا احصاء نہیں کر سکتے. یہ ساری کی ساری وہ نعمتیں ہیں جو شامل ہوتی ہیں, تو انسان ایک نوالہ اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے ابھی تو آپ اور نوالہ ایک دوسرے تک پہنچے ہیں, پہنچنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ہیں جس نے اٹھا کر اپنے ہاتھ سے منہ میں ڈالا؟ نہیں, ایک پورے اس سسٹم میں صرف ایک جوائنٹ فریز ہو جائے آپ اپنے ہاتھ سے نوالہ اٹھا کر اپنے منہ میں, ایک جوائنٹ, صرف ایک جوائنٹ فریز ہو جائے, ہاں کونی پہ وہ زور کی چوٹ لگ جائے اور یہ کونی مڑنا بند ہو جائے, پھر مجھے اپنے ہاتھ سے نوالہ کھا کر دکھا دینا. اس ہاتھ کے اندر کتنے مسلز ہیں, اس ہاتھ کے اندر کتنی ہڈیاں ہیں جو مل کر یہ طاقت ادا کر رہی ہیں. کوئی ایک مرحلہ ہاں تھوڑی سی دیر کے لیے ہاتھوں میں ضعف پیدا ہو جائے, نوالہ کبھی اپنے گھروں میں بوڑھوں کو دیکھنا, کبھی اپنے گھر میں بچوں کو دیکھنا, اور پھر فیصلہ کرنا کتنے مختار ہو. منہ میں پہنچانے کے بعد, منہ میں پہنچانے کے بعد ذرا سا فریز ہو جائے جبڑا تو مجھے چبا کے دکھا دینا. ہاں ذرا سا یہ جبڑا فریز ہو جائے, چوٹ لگ جائے, آدمی چبانے کے قابل نہیں رہتا. کس نے دی یہ طاقت, کس نے یہ سارے انتظامات کیے؟ اور پھر تمہارا ارادہ اور اختیار بس یہاں تک ہے کہ اس کو لا کر منہ میں چبا کر اور گلے سے اتار. جیسے ہی گلے کے اس طرف گیا, تمہارا ارادہ اور اختیار ہے یا کسی اور کا ارادہ اور اختیار ہے؟ تو کہاں بیٹھے ہو ارادے کی دنیا میں؟ یہ ضعیف ترین ارادہ, یہ ظریف ترین اختیار کہاں سے آیا ہے؟ یہ بھی پروردگار عالم عطا کرتا ہے تو انسان کے پاس ہے. اب یہ ارادہ اور اختیار, یہ میں نے عرض کیا کہاں پیدا ہوتا ہے, یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جب شریعت کا دائرہ آتا ہے. اب اس ضعیف اور اس بہت ہی محدود سے ارادے اور اختیار کو اگر بڑھانا ہو تو کیا کریں؟ یہ کب بڑھتا ہے, اس میں کب اضافہ ہوتا ہے؟ جتنا انسان اپنے اسی محدود سے, اسی بہت ہی مختصر سے ارادے کو, اسی ضعیف سے ارادے کو جتنا خدا کو واپس پلٹانا شروع کرتا ہے, اتنا انسان دوبارہ طاقتور اور اتنا ہی صاحب ارادہ ہوتا چلا جاتا ہے. اب یہ شریعت کا کمال ہے, لہذا غور کیجئے گا. وہ جو اقبال کا مشہور شعر ہے, وہ ایک سجدہ, جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جہاں تم نے اپنا سر خدا کے سامنے جھکا دیا, وہاں پر خدا پر تمہیں ہزار سجدوں سے بچانا شروع کر دیتا ہے. یا یاد رکھے گا, لہذا انسان جیسے ہی شریعت کے دائرے سے باہر نکلتا ہے, خدا سے دوری اختیار کرتا ہے, ہر قدم کے اوپر شیطان اس کو ذلیل کرتا ہے, ہر قدم پر شیطان اس کو اپنے سامنے اور لوگوں کے سامنے جھکانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جیسے ہی انسان اپنے ارادے کو اللہ کے حوالے کرنا شروع کر دیتا ہے, یہ چھوٹا سا ارادہ, یہ بہت ضعیف سا ارادہ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, اب اگر تم دوبارہ اسی ارادے کو شریعت پر عمل کے ذریعے سے خدا کی طرف پلٹانا شروع کرو تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جتنا انسان اپنے آپ کو خدا کے ارادے کے مطابق ڈھالتا چلا جاتا ہے, خدا اس کو اتنا صاحب اختیار بنانا شروع کر دیتا ہے. آخری منزل جو انسان پہنچ سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جہاں وہ اس منزل پر پہنچ جائے کہ خدا آگے بڑھ کر کہے وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ, یہ تو چاہتے بھی وہ نہیں ہیں جو خدا نہ چاہے. بس اگر انسان اپنی چاہت کو خدا کی چاہت کے ساتھ اس طریقے سے ڈھال لے کہ وہ بھی نہ چاہے جو خدا نے نہ چاہا ہو, تو پھر اس منزل پر پہنچتا ہے. جب اس کی چاہت خدا کی چاہت کے مطابق ہو جاتی ہے, ارادہ کر کے اگر ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کر دے, سورج پلٹ آتا ہے. ارادہ اور اختیار کر کے اگر چاند کو اشارہ کر دے تو ٹکڑے ہو جاتا ہے. ارادہ کر دے تو آسمان سے ستارہ اس کی دہلیز پر سجدہ کرنے کے لیے آتا ہے. ایک مرتبہ اپنے اس ضعیف ارادے کو خدا کے حوالے کر کے تو دیکھو وہ تمہیں کتنا صاحب اختیار اور ارادہ بنا دے. صاحب ارادہ اور اختیار بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اسی ضعیف سے ارادے اور اختیار کو خدا کے حوالے کرنا ہے. اتنی سی بات ہے. जितना करोगे उतना साहिब इरादा और इख्तियार बनते चले जाओ। हमने अपना इरादा खुदा के इरादे के हवाले करना। कल इंशाल्लाह अर्ज़ करूँगा कि खुदा का इरादा, उसकी कैफियत क्या है और हुकूमत मुस्तज़अफ़ीन का मरहला क्या है। लेकिन एक मरहला यहाँ आज तय करूँगा गुफ्तगू का कि अल्लाह तबारक व तआला के कुछ इरादे ऐसे हैं कि जो उसने हम इंसानों पर मौकूफ़ कर रखे हुए हैं। यही अपना इरादा खुदा के सुपुर्द करना। लिहाजा अब ये जितनी भी गुनाह और सवाब की कैफियत है इसका क्या ताल्लुक, खुदा ने हमें इरादा और इख्तियार दे दिया। अब ये मरहला ये नहीं है कि आप कोई नेक काम इसलिए करते हैं कि खुदा को पता होता है, या कोई शख्स गुनाह इसलिए अंजाम देता है कि खुदा को इल्म है। ये बहस है अपने अंदर और बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों का इल्म और इरादे इलाही की गलत तफसीर करके बहुत सारे जालिमों को बचाने की कोशिश की है। और हमेशा से जो जालिम हुकूमतें रही हैं उन्होंने इरादे इलाही की गलत तफसीर सिर्फ इसलिए की है ताकि उसके ज़रिए से अपने गुनाहों और अपने मजालिम को डिफाइन कर सकें। लिहाजा अक्सर हुक्मरानों को यह हुआ कि जब उनसे कहा, उन्होंने कहा भाई अगर अल्लाह ना चाहता तो मैं हुकूमत पर पहुँचता। अब ये जो बेचारा मुसलमान कि जिसके अकीदे ही ठीक नहीं होते वो कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो कहता हाँ ये तो है, अगर अल्लाह ना चाहता तो ये कैसे पहुँच जाता, तो वो उसको क्या समझता है अल्लाह की मर्ज़ी। ये तारीख के वो बड़े बड़े इश्तबा, और आज भी एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है कि जिनको ये बात समझ में नहीं आती। अगर आप इसको यूं तसव्वुर कर ले तो इसका मतलब क्या हुआ, जालिम अगर अल्लाह के इरादे से बैठा हुआ है तो नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह ने इसका इरादा किया है कि जालिम हम पर मुसल्लत हो, नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने अब उसका इरादा और इल्म चूंकि बेनिहायत है और हमारे इरादे और इख्तियार से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, गनी अनिल आलमीन है, लिहाजा उसके बहुत सारे काम हमारे कामों के, जब उसने हमें इरादा दे दिया तो अब हमसे तो गनी है वो, हमारे करने ना करने से उसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब नहीं पड़ता तो क्या होता है, इन्हीं तमाम चीज़ों का फ़र्क दोबारा घूमकर हमारे ही तरफ आना है, इसका फ़ायदा और नुकसान हमें ही होना है। बस आप अगर नमाज पढ़ेंगे इसका इख्तियार अल्लाह ने आपको दिया है या नहीं दिया। अगर आप अल्लाह के इरादे की वजह से नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर आपको सवाब कोई नहीं मिलेगा, अगर आप अल्लाह की वजह से नमाज नहीं पढ़ पा रहे तो गुनाह नहीं होना चाहिए। ये जब कहा जाता है कि अल्लाह तमाम चीज़ों का इरादा करता है तो बिलाखिर अब गौर कीजिएगा, ये नमाज पढ़ने की जो तौफीक आपको हासिल होगी और उसका जो आपके अंदर ताकत और कुदरत है वो सब किसका दिया हुआ है, खुदा का। इस एतबार से इरादा खुदाबंदी यहाँ पर मौजूद है। और जब इंसान अपने इरादे से नहीं पढ़ रहा होता तो हत्ता ये इख्तियार भी बिलाखिर खुदा ने उसको दिया है या नहीं दिया हुआ है, चूंकि इरादा खुदा का दिया हुआ है इसलिए इसकी निस्बत भी खुदा की तरफ दी जा सकती है। लेकिन इस दिए जा सकने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि खुदा ने इरादा किया। अब होता क्या है गौर कीजिएगा, जब भी आप माजी की मामलात में खुदा के इरादे को समझने की कोशिश करेंगे आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाल और मुस्तकबिल में समझना आसान है। मसलन ये गिलास में पानी मौजूद है, मेरे पास इख्तियार है या नहीं कि मैं पीऊं, पी सकता हूं। और अब ये जो मरहला है, अब मैं पानी पीऊंगा तो क्या मेरा पानी पीना सिर्फ इस वजह से है कि खुदा को मालूम है और खुदा ने इरादा किया हुआ है, या मैं पानी नहीं पीऊंगा ये इसलिए है कि खुदा ने कोई इरादा किया हुआ है और खुदा के इल्म में है कि मैं पानी नहीं पीऊंगा, आया इस वजह से है या नहीं। मेरे पास इरादा है, मैं चाहूं तो पानी पी लूं, चाहूं तो पानी न पीऊं। तो जब हम यहां खड़े होकर देखते हैं तब हमें पता लगता है मेरा पानी पी लेना या न पीना इल्म खुदा में मौजूद है, दोनों चीजों का इरादा उसने मुझे चूंकि दोनों का ही दिया हुआ है लिहाजा उसके इरादे के दायरे से बाहर नहीं है। लेकिन उस आन में कि मैं पानी पीऊं या ना पीऊं इसका इरादा मेरे पास होना यह बताता है कि खुदा का इल्म और इरादे की कैफियत ऐसी है। इसीलिए कहा है आपसे जो शुरू में अर्ज किया कि वाहिद जात जो खुद गनीयुन अनिल आलमीन हो वही हमें इरादा और इख्तियार दे सकती है। ये जिसका इल्म ला महदूद है, जिसका इरादा ला महदूद है, जो खुद गनीयुन अनिल आलमीन है, सिर्फ और सिर्फ इरादा वह हमें दे सकता है। अब ये जो हमने फैसला करना है ये कुछ चीजों को जमीन पर तश्कील देता है। हम नमाज पढ़ेंगे तो हमें सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो अजाब, दोनों रखे हुए हैं। हम ईमान पर अमल करेंगे जन्नत में जाएंगे, नहीं करेंगे तो दोजख में जाएंगे। बस ये हमारे इरादे और इख्तियार में, ऐसे ही इरादा और इख्तियार हमें इमाम और नबी के मुकाबले पर अपने अमल के जरिए से अंजाम देना है। अगर हम इमाम का साथ देंगे तो ज़मीन पर हुकूमत इलाहिया कायम होगी, अगर हम इमाम का साथ नहीं देंगे तो ज़मीन पर हुकूमत इस्लामिया कायम नहीं होगी बल्कि हुकूमत फासिकीन और मुफसिदीन कायम होगी। अगर इस्लाम हुकूमत करेगा तो अदल होगा, इंसाफ होगा, तरक्की होगी। अगर फासिकीन और फासिदीन की हुकूमत आएगी तो जुल्म होगा। लिहाजा परवरदिगार अगर कोई मुफसिद, अगर कोई फासिक हुकूमत पर आता है तो सिर्फ खुदा का इरादा और इख्तियार नहीं, खुदा ने उसको नहीं बनाया बल्कि ये इंसानों की कोताही और अपना अमल अंजाम न देना है जिसकी वजह से कोई जालिम तख्त और हुकूमत तक पहुंचता है। अब अगर हमें यह बात समझ में आए तो याद रखिएगा, एक शुबा है जिसको आम तौर पर फैलाया भी गया और जिसके हवाले से कोशिश की गई कि जहनों को मुशवश किया जाए। लिहाजा बाज ने इमामत के मसले पर हमसे ये सवाल किया, कब जब आप ये कहते हो कि इमामत मंसूस मिन अल्लाह है और इमाम इमाम होता है, जब उसको खुदा ने इमाम बना दिया तो वो इमाम है, तो फिर आप जो कहते हो कि जी सकीफा में उनका कोई हक गस्ब हुआ तो ये तो नबुवत की तरह का हक है, जिस तरह कोई नबी से नबुवत को नहीं छीन सकता तो इमाम से इमामत को कोई नहीं छीन सकता, तो जब इमामत छीन ही नहीं सकता तो फिर गस्ब क्या हुआ? ये सवाल है, ये किया गया है, तो जवाब क्या है इसका? भाई इमाम से इमामत को छीन सकता है? नहीं छीन सकता। जब इमाम अल्लाह ने बना दिया हजरत अमीर को तो इमाम है, अब चाहे तुम मानो या ना मानो इमाम है, तो फिर गस्ब क्या हुआ? क्या चीज है जो कि सकीफा में गस्ब हुई है? वो कौन सा हक है जिसके लिए आप आवाजें उठा रहे हैं? वो इमाम बन गए, इमाम है, खत्म हो गई बात? नहीं, बात खत्म नहीं होती, इमाम बनाने से बात शुरू होती है। जब इमाम बना दिया तो इमाम बनाने का माना क्या है? एक हक वो है जो उसका है, एक वो हक है जो हमारा है, एक वो चीज है जो अल्लाह ने उसे अता कर दी, एक वो जिम्मेदारी है जो इमाम के मुकाबले पर हमें और आपको अदा करनी है। अब अगर आप यही सवाल पैगंबर के मुकाबले पर लेकर जाएं, को भाई पैगंबर को अल्लाह ने नबी तो बना दिया, अब माने या ना माने क्या फर्क पड़ता है? तो आप कहेंगे नहीं, जब नबी बना दिया है तो एक हक वो है जो मुसलमानों की गर्दन पर है, वो क्या है? कि इस नबी को माने, इसके सामने सर तस्लीम खम करें, इसकी इताअत को कबूल करें। लिहाजा अगर कबूल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे, अगर कबूल नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। बस जैसे नबी की नबूवत को कबूल करना लोगों की गर्दन पर हक है, इसी तरह से जिसे अल्लाह इमाम बना दे उसकी इमामत को अपने ऊपर लागू करना वो हक है कि जिसको सकीफा में गस्ब किया गया। इमाम की इमामत को मानना, ये इमाम की इमामत को तस्लीम करना, ये इमाम की इमामत को मानना, उस वक्त तक हमारा हक हम इमाम का अदा नहीं कर सकेंगे जब तक हम इमाम की इमामत के लिए उस तरीके से कोशिश न करें जैसे बातिल की हुकूमतों ने अपने लोगों को ऊपर तक पहुंचाने और हुकूमत तक पहुंचाने के लिए कोशिश की है। इसी बात का रोना आइम्मा ने मुसलसल रोया है। इमाम क्या कह रहे हैं? उसे पता है, उनको पता है कि ये बातिल के साथ हैं लेकिन उसके साथ है। तुम्हें पता है कि तुम हक के साथ हो लेकिन फिर भी आमादा नहीं हो। बस जब लोग अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम नहीं देते तो खुदा का बनाया हुआ लीडर भी जमीन पर क्या हो जाता है? मुस्तज़ाफ। हमारी कोताही है। लिहाजा हजरत अमीर, मुश्किल क्या है? पैगंबर ने ऐलान कर दिया, खुदा के हुक्म से किया है। सोचे ना, अल्लाह किसी को इमाम बनाकर मेरे और आपके सामने भेज रहा है कि भाई ये मेरी तरफ से तुम्हारा इमाम है, ये लीडर है, ये तुम पर हुकूमत करेगा और मैं उसकी हुकूमत को बनाने के लिए कोई कोशिश ही अंजाम ना दूं तो मैंने कितनी बड़ी खयानत की, मैंने कितनी बड़ी खयानत की। मरहला अजीजा मन ये है कि अल्लाह तबारक व तआला मुअजजात के जरिए से जोर जबरदस्ती मजबूर करके लोगों को ना मुसलमान बनाना चाहता है और ना इमाम की इमामत को उनके ऊपर लागू करना चाहता है। लिहाजा अगर चार या छह से ज्यादा अफराद हजरत अमीर के साथ जमा न हो तो वो जो कुल की
کائنات پر اختیار رکھتا ہے، جس کا ہاتھ پلٹا ہوا سورج جس کے ہاتھ پر خیبر ٹنکے کی مانند ہو جاتا ہے، اس کے گھر کے دروازے کو آگ بھی لگتی ہے اور اس کی ناموس پر ہاتھ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی مشکل کیا ہے؟ بہترین امام ہے، لیکن جب ساتھ دینے والے دولت کے آگے جھک جائیں تو امام تنہا رہ جاتا ہے۔
امام حسین کیا بتا رہے ہیں؟ اگر 200 بھی ایسے افراد مرد اور خواتین مل کر آ جائیں کہ جن کی صفوں میں منافق نہ ہوں، جو کہ واقع ان مؤمن ہوں، تو پھر امام تلواروں سے بھی گھبراتا نہیں ہے۔ باقی ائمہ کا درد کیا رہا ہے؟ باقی ائمہ کا درد یہ رہا ہے، امام سجاد گوشہ نشین نہیں ہے۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد، جبکہ کربلا سے ہمارا 1400 سال کا فاصلہ ہے، اگر کوئی سید بھی ہے درمیان میں تو کم از کم 50 یا اس سے زیادہ پشتوں کا فاصلہ ہے، اس کے باوجود اگر کربلا میرے جیسے گناہگار کے سینے میں آگ لگا دیتی ہے، تو سوچو سید سجاد جس نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لہذا سید سجاد قلب کیسے حضرت کا پارا پارا نہ ہو، اس قلب میں آگ کیسے نہ لگی ہو، یہ آنکھیں کیسے خون کے آنسو نہ روئیں جنہوں نے کربلا اور کربلا سے آگے بڑھ کر کوفہ و شام کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں۔ لیکن کیا یہ خون کے آنسو رونا، یہ عزاداری، یہ قلب کی کے اندر حرارت، یہ صرف یہ ہے کہ حضرت سجاد نے گریہ کیا؟ کیا حضرت سجاد منتقم کربلا نہیں ہے؟ آج مجھ جیسے گناہگار کو اگر موقع مل جائے تو کربلا کے خلاف آج بھی بات کرنے والے، یزیدیت کے حق میں آج بھی نعرہ لگانے والوں کی نسلوں کو برباد کر دیں۔ یہ ہماری کمزوری ہے جو آج ہمارے ملک میں کوئی یزید کے لیے نعرہ لگا رہا ہے، یہ ہماری، اس سب کا یاد رکھیے گا، اس سب کا سوال ہم سے اور آپ سے کیا جائے گا قیامت کے دن، کیسے جرت ہوئی پاکستان کی سرزمین پر یہ ناپاک نعرہ لگنے کی؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ اب اپنے آپ کو پہچانو، ہے کسی کی جرت کہ جا کر کسی ہمسائے ملک میں جا کر یہ نعرہ لگا سکے؟ ہے کسی کے اندر جرت؟ نہیں ہے نا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کیسے یہ جری پیدا ہو گیا؟ یہ ہمارے اور آپ کے اختلافات کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کا، یہ وہ کمزوری ہے کہ جو ائمہ کو گھروں میں بیٹھنے پر مجبور کرتی ہے۔ تاریخ کے آئینے میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگوں کو، ہمیں صرف اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ کاش ہم اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ لگے۔ آج بھی وہ خبیث افراد موجود ہیں کہ جو امامت کے حق سے اس کو گرانے کے لیے ممبروں سے بیٹھ کر انحرافی گفتگو کرتے ہیں، بچوں کے ذہنوں کو مشوش کرتے ہیں، کربلا کے اہداف کو مشوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار یہ کوشش کرتے ہیں عزاداری کرو، بگریہ کرو، تم بخشے جاؤ گے۔ جناب زینب نے اسی لیے کوفہ کے رونے والوں کو بد دعا دے کر یہ سمجھایا تھا، ہمیں تمہارے آنسو نہیں چاہیے، جو ہاتھ ہماری نصرت کے لیے نہیں اٹھ سکتا اس کا ہمارے لیے سینے پر پڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب تک تمہارے سینے میں پڑنے والا ہاتھ اپنے زمانے کے یزید کے منہ پر تماچا نہ بنے، تمہارا ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ جتنا مرضی اپنے سینے پیٹ لو، جتنا مرضی گریا و فریاد کر لو، تمہارا یہ نالا و فریاد اہل بیت کو نہیں چاہیے۔ ہر وہ آنسو جو حسین کی نصرت بن کر نکلے، ہر وہ ہاتھ جو یزید کے منہ پر تماچا بن کر نکلنے کے لیے اٹھے، وہ ماتم حسین ہے، وہ اشک حسین ہے جس کی ضرورت ہے۔ صرف گریہ، صرف عزاداری، صرف آنسو بہاتے رہ جانا، عملی میدان میں کچھ نہ کرنا، گھروں میں دبک کے بیٹھے رہنا، یا ائمہ کو نہیں چاہیے۔ اور ایسے ہی افراد نے، بہترین افراد، ان سے بہترین کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اگر ان سے بہترین کوئی نہیں ہے اور ہم ان کے بہترین اگر اصحاب ثابت نہیں ہو سکے، تو پھر ہم سے زیادہ برا کوئی نہیں ہے تاریخ میں۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتنے بہترین ائمہ کسی کو مل سکتے ہیں؟ آج ایک آدمی ذرا سا اٹھ جاتا ہے، ذرا سا دو باتیں کہہ دیتا ہے، آپ کو امریکہ کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے، پاکستان کو ترقی دلانے کے لیے ایک تعداد ہے جو کہ اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ اور وہ جو زمین پر عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہے، جس کے ذریعے سے ظلم و جور اور استبداد اور استکبار نے خاتمہ پیدا کرنا ہے، جو دل کی ٹھنڈک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو زہرا اور علی کی تمنا ہے، جو کربلا کا منتقل ہے، جس نے آ کر عدل و انصاف کو حقیقی معنی میں قائم کرنا ہے، اس امام کے چاہنے والے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ क्या हमारा अमल है इमाम की हुकूमत बनाने में? आज तक हमने इमाम की हुकूमत बनाने के लिए क्या इकदाम अंजाम दिया है? सिर्फ इमाम कहने से इमाम नहीं बन जाता। लिहाजा ये दुख है सैयद सज्जाद के दिल में, और इमाम ने इसी वजह से जितने भी इनकलाबात करबला के बाद पैदा हुए हैं, ये है अब सियासत। इस तरीके से इमाम सज्जाद ने इन कामों को अंजाम दिया कि आज तक दुनिया रीशे ढूंढती फिर जाती है, उसे इमाम तक कोई रीशा पहुंचता हुआ नहीं मिलता। लिहाजा बाज अहमक ये ख्याल करते हैं कि शायद इमाम ने कोई सियासी अमल अंजाम नहीं दिया। नहीं, जितने भी इनकलाब हैं, ये चाहे कयाम तवाबीन हो, चाहे कयाम मुख्तार हो, अपना बेटा जैद ऐसे तरबियत करके दिया है कि उसने अपनी जगह पर कयाम किया। कयाम शहीद फख्त जितने भी कयामा हुए हैं, वो सारे के सारे इमाम सैयद सज्जाद की स्ट्रेटेजी का नतीजा है। लेकिन दिल खून के आंसू रो रहा है, क्यों? सैयद सज्जाद करबला के ऐन शाहिद हैं। लिहाजा जब शाम के बाजार में पैगंबर का सहाबी सुहैल साएदी पहुंचा और उसने देखा कि इतना रश है, तो उसने चाहा कि बाजार की तरफ ना जाए, लेकिन खुद कहता है मेरा जरूरी काम था, मुझे जाना पड़ गया। इतना रश मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। कहा अब जब पहुंचा हूं और रश में जरा सा दाखिल हुआ तो धक्कम फेल ने मुझे बेकाबू कर दिया। अब रश और धक्के के साथ जहां जहां मुझे लेकर जा रहा है, मैं भी उसके साथ साथ जा रहा हूं। कहा जब हाथ और पांव काबू आए, थोड़ा सा इस्तेहकाम मिला, तो देखा ऐन काफिले के सामने पहुंच चुका हूं, असीरों के कारवान के सामने। कहा जो सर उठाकर देखा तो देखा कि एक मरीज गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, सर झुकाए खड़ा है। कब जब यहां तक पहुंच गया था तो सोचा कि पूछ लूं कौन है, सलाम किया। का जैसे ही मैंने सलाम किया, उस मरीज ने एक निगाह हसरत मेरे ऊपर डाली और बड़े दुख भरे लहजे में मुझसे कहने लगा, इस दयारे गरीबा में हम पर सलामती भेजने वाला तू कौन है? ये दर्द है सैयद सज्जाद का। कहा हम जब से इस दयार में आए हैं, या हमें दुश्मन मिला है, या पत्थर मारे गए हैं, या हम पर कचरा और आतिश फेंका गया है, कहीं हम पर गर्म पानी फेंका गया है, सलामती भेजने वाला तू कौन है? कहा सुहैल साएदी हूं, पैगंबर का सहाबी हूं, मुसलमानों के पैगंबर का सहाबी, नाम सुहैल साएदी हूं। क्या जानना चाहता है? कहा जानना चाहता हूं आप लोग कौन है, कहां से आए हैं? का हमारा ताल्लुक भी मदीनतुन नबी से है। मदीनतुन नबी का नाम सुना, सुहैल कहता मैं परेशान हो गया। कहा मैं तो समझ रहा था कि आप कोई गैर मुस्लिम लोग हैं जिनको इस तरीके से असीर करके लाया गया है। मुसलमान को इस तरीके से असीर करके लाना पैगंबर की सुन्नत नहीं है, इस्लाम का हुक्म नहीं है। कोई अगर मुसलमान गलती भी करे तो उसके साथ ये सलूक रवा नहीं है। कहा आप मुसलमान हैं? मदीनतुन नबी, मैं खुद मदीना का रहने वाला हूं। किस मोहल्ले से ताल्लुक है? कब मोहल्ले बनी हाशिम से। सुहैल कहता मैं कांप कर रह गया, मोहल्ले बनी हाशिम तो पैगंबर की जुर्रियत है। सुहैल कहता मैं तकरीबन सभी को जानता हूं, मैंने आपको पहचाना नहीं। एक मर्तबा सर को बुलंद करके कहा सुहैल गौर से देख, अली इब्न अल हुसैन ज़ैन अल आबिदीन हूं। सुहैल कहता जैसे ही मैंने हजरत को पहचाना, एक मरतबा अमामा समीन पर फेंका, सर पीट कर रो कर कहने लगा मौला मौला आप यहां, यह आपके साथ हुआ है। सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन कहां है? बाकी अहले बैत के साथ क्या हुआ? कहा देख के नेज़ों पर जितने सर हैं, ये मेरे खानवादे के सर हैं, ये रसूल के घर वालों के सर हैं। सुहैल ने पूछना चाहा कि मौला ये ऊंटों पर बीबियां कौन हैं? एक मर्तबा इमाम ने डांट कर कहा सुहैल अपनी निगाहों को नीचे रखना, ये ऊंटों पर जो बैठी हैं ये रसूल की बेटियां हैं, ये रसूल के घर की बहुएं हैं। भैया सुनना था, एक मर्तबा कांप कर रह गया, रोकर कहता है मौला ये सब क्या हो गया, मौला मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? इमाम ने कहा सुहैल अगर कुछ चादरों को मुहैया कर सकते हैं, ये रसूल की बेटियां हैं। अरे अहले बैत अतहार किस कदर मजलूम हो गए हैं, जो कायनात को देने वाले हैं चादर का सवाल कर रहे हैं। सुहैल दौड़ कर गया, कहा मैंने कुछ चादरें खरीदी, बीबियों में तकसीम की, अभी बीबियों ने चादरों को सर पे रखा था, एक मर्तबा नए बुलंद हुए, बीबियों के सरों से चादरों को दोबारा उतार लिया गया। सुहैल कहता मैं रोता हुआ आया, मैंने आकर इमाम से कहा मौला ये चादरें नहीं देने दे रहे, कोई और हुक्म कोई और काम हो जो मैं कर सकूं। इमाम ने कहा सुहैल ये जो सरों को बुलंद किए हुए हैं, नेजों पर लिए हुए हैं, इनसे कह के जरा सा ऊंटों से फासला इख्तियार कर ले। सुहैल कहता मैंने कहा मौला इससे क्या होगा, कहा सुहैल अब भी सैयद सज्जाद से बर्दाश्त नहीं होता, अरे कुछ फासला होगा, निगाहें कुछ तो तकसीम होंगी, कुछ सर का तमाशा करे। सुहैल कहता मैं आगे बढ़ा, जिसने सर सैयद शोहदा को उठाया हुआ था उससे मैंने दरख्वास्त की, बहुत उससे कहता रहा, उसने मेरी बात न मानी। मैंने कहा सहाबी पैगंबर हूं तो उससे दरख्वास्त कर रहा हूं, उसने तब भी मेरी बात न मानी। मैंने उससे कहा मैं तुझे पैसे देता हूं, लेकिन उसने मेरी बात की तरफ तवज्जो नहीं की। कहा मैं हैरान परेशान बैठा था क्या करूं, इतने में मैंने देखा कुछ दूर चबूतरे पर कुछ औरतें बूढ़ी बैठी हुई थी, चार बूढ़ी औरतें दामन में पत्थर लिए हुए हैं और पत्थर सर सैयद शोहदा को मारना चाहती हैं, लेकिन पत्थर हजरत के सर तक पहुंच नहीं रहा। उन्होंने उसको अपने पास बुलाने की कोशिश की लेकिन उनके पास नहीं गया। इतने में एक मलऊना ने अपने गले में से कीमती हार निकाला, निकालकर उस सर वाले को दिखाकर चबूतरे के पास जमीन पर डाल दिया। कहा अब इस हार की लालच में ये सर अकदस को लिए हुए उस चबूतरे के नजदीक गया। बस मैंने देखा कि उन औरतों ने अपने हाथों में पत्थरों को आमादा रखा। जब मजलूम का सर नजदीक आया इन्होंने पत्थर मारना शुरू किए। एक पत्थर आकर पेशानी सैयद शहदा पर लगा, सरे अकदस से खून जारी हुआ। सुहैल कहता है मैं ये मंजर देख नहीं सका, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। एक मर्तबा बद्दुआ के लिए हाथ उठाए और हाथ उठाकर कहा परवरदिगार मैं तेरे नबी का सहाबी हूं, मेरी जो इज्जत तेरी बारगाह में है उसका वास्ता देकर तुझसे दुआ करता हूं, इन मलऊनाओं को वासिले जहन्नम कर दे। का अभी मेरी बद्दुआ के अल्फाज खत्म नहीं हुए थे, एक मर्तबा चबूतरा हिला, हिलकर नीचे गिरा, चारों मलऊनाएं वासिले जहन्नम हो गई। का अभी मैं देख रहा था सैयद सज्जाद अपनी हथकड़ियों को संभाले मेरे पास आए और आकर मुझसे कहा सुहैल तू एक पत्थर की जरबत को बर्दाश्त न कर सका और तूने बद्दुआ दे दी, अरे मुझ सैयद सज्जाद से पूछ, मेरे दिल से पूछ, मैंने अपनी आंखों से अरे अपने भाई अली अकबर को सेना लगते हुए देखा, मैंने अपने भाई कासिम के टुकड़ों को देखा, मैंने आउन मोहम्मद के जनाजों को देखा, अरे अपने चचा के बाजुओं को कटते हुए देखा, अरे अपने अली असगर को तीर लगते हुए देखा, अरे मैंने अपने बाबा को कुंद खंजर से ज़बह होते हुए देखा, अरे बाबा का लिबास लुटते हुए देखा, अपने बाबा के जसद अथर पर घोड़ों को दौड़ते हुए देखा, अरे मैंने खैमों को जलते हुए देखा, मैंने रिदाओं को छिनते हुए देखा, मैंने पैगंबर की ज़ुर्रियत को बाजारों और दरबारों में गुलामों की तरह से घसीटते हुए देखा, लेकिन हमारे मोहम्मद ने बद्दुआ नहीं की।
अला वलअनतुल्लाहि अलल क़ौमिल ज़ालिमीन वसयअलमु अल्लज़ीन ज़लमू अय्यमन क़ल्बी यन्क़लिबून फ़रिलाहा बिहक़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा। हमारी इबादत को अपनी बारगाह में क़बूल व मंज़ूर फरमा। बिहक़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा मुंतक़िम ज़हरा मुंतक़िम करबला मुंतक़िम असीरान करबला इमाम ज़मान अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ़ के ज़ुहूर में तअज़ील फरमा। बारिलाहा बिहक़ ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा तमाम उलमा मराजे इज़ाम की हिफाजत फरमा। मराजे इन के दुश्मन और उनकी इहानत करने वाले अगर اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے نیست و نابود فرما. بارے الہ تمام عزاداران سید الشہداء اور عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما. عزاداری کے دشمن, دین دشمن, پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. جہاں جہاں مومنین باطل سے برسر پیکار ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. دیگر تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما, ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بارِ الٰہ ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے آوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.